नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बनने का गौरव हासिल किया। हल्द्वानी में राजकीय शिक्षक संघ की अनूठी पहल। शीतकालीन अवकाश के दौरान बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए निशुल्क एक्स्ट्रा क्लास का संचालन। हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट एकता मॉल का निर्माण किया जा रहा है। और चमोली जिले के सीमांत क्षेत्र नीति घाटी में टिम्बरसैंण महादेव के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीता कांडपाल। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बनने का गौरव हासिल किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में ये घोषणा की।
चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया, हम नंबर वन बन गए। इस साल हमारा उत्पादन 150.18 मिलियन टन और चीन का 145.28 मिलियन टन। ये चीन को पीछे छोड़ना एक असाधारण उपलब्धि है। हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके हमने अन्न के भंडार भर दिए हैं।
श्री चौहान ने कहा कि अधिक उपज वाली फसलों के विकास में देश को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को निर्देश दिए कि ये नई प्रजातियां जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचे। कृषि मंत्री ने कहा कि इनसे किसानों को अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता की फसल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में राजकीय शिक्षक संघ द्वारा शीतकालीन अवकाश के दौरान बोर्ड परीक्षार्थियों को निशुल्क एक्स्ट्रा क्लास की सुविधा दी जा रही है। पीएम श्री जीजीआईसी हल्द्वानी में अतिरिक्त कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। शिक्षक प्रमोद भट्ट ने बताया कि 50 शिक्षकों ने अपनी सेवाओं से बच्चों को विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम पढ़ाने के सेवा का संकल्प लिया है। शिक्षक प्रमोद भट्ट ने बताया कि एक्स्ट्रा क्लास के लिए 55 से अधिक बच्चों ने पंजीकरण कराया है।
दिनांक 3 जनवरी से 13 जनवरी तक यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हम छात्रों को विभिन्न विषयों में जो कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परीक्षार्थी हैं, विशेष रूप से उनके लिए कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। और इसमें सभी विषयों की कक्षाएं और सभी वर्गों की, जैसे इंटरमीडिएट में विज्ञान, कला और मानविकी, सभी विषयों में कक्षाएं संचालित की जा रही है। लगभग हमारे पास 50 शिक्षकों का पूल है, जिन्होंने इस पर अपने स्वयंसेवी रूप में अपने शिक्षण कार्य करने के लिए अपना नाम लिखवाया है और आगे आए हैं।
प्रदेश में आम जनता को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सभी विकास खंडों और न्याय पंचायतों में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत शिविरों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ जनता को नजदीकी क्षेत्र में उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि जिले में इस अभियान के तहत अभी तक 13 शिविर लगाए जा चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं।
राज्य सरकार के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जन जन की सरकार जन जन के द्वार के अंतर्गत हमारे 13 कैंप लग गए हैं। 45 दिन का कार्यक्रम, जिसमें हमने 31 जनवरी तक का कैलेंडर जारी किया और आगे के 11 दिन का कैलेंडर मैंने अभी रोका है, क्योंकि कुछ जगह जहां पे डिमांड आई है कि एक बार और लगा दिया जाए। तो नेक्स्ट 1 फरवरी से 11 फरवरी में हम वो डिसाइड कर देंगे कहाँ 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 कैंप लगाया जाना है। साथ ही अभी तक जो कैंप लगे हैं, 13 कैंप लग गए हैं, 13 कैंपों में लगभग 8,500 लोगों का प्रतिभागिता रही, जो लाभार्थी है किसी न किसी तरह, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित है, चाहे समाज कल्याण की योजना से संबंधित है, चाहे कृषि से संबंधित है, ध्यान से अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का लाभ मिला है।
प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सर्विलांस और साइबर इंटेलिजेंस को विशेष महत्व दिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को प्राथमिकता देते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली को अधिक दक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर चर्चा की गई। पुलिस महानिदेशक ने ATS, ANTF और ट्रैफिक निदेशालय के पुनर्गठन पर भी जोर दिया। साथ ही ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लक्ष्य को साकार करने के लिए ANTF को और सशक्त करने के निर्देश दिए गए।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट एकता मॉल का निर्माण किया जा रहा है। इसकी विशेषता ये है कि इसे देश के सभी प्रांतों के उत्पाद बेचे जाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को साकार करते हुए यह मॉल जहां भारतीय संस्कृति और लोक कला को एक रूप में पिरोने का काम करेगा, वहीं उत्तराखंड के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाएगा। हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकता मॉल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मॉल भारत की संस्कृति और अनेकता में एकता एक आदर्श बनेगा। इस मॉल का निर्माण इसी साल पूरा कर लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री जी का विजन है पूरे देश में लगभग सभी प्रदेशों में प्राइम मिनिस्टर यूनिटी मॉल के नाम से एक एकता मॉल बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मुख्यतः यह है कि हर प्रदेश में एक इस प्रकार का मॉल हो जिसमें पूरे देश के राज्यों का प्रोडक्ट जो है वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो। उसी संकल्पना के तहत, हालांकि इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी हैं, इसी संकल्पना के तहत ये यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ भी, यहाँ हरिद्वार को ये सौभाग्य मिला है और भाद्राबाद से ठीक पहले रानीपुर झाल के आसपास बन रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। कार्य प्रगति पर है, 2026 तक इसको हम लोग पूरा कर लेंगे।
चमोली जिले के सीमांत क्षेत्र नीति घाटी में छोटा अमरनाथ के नाम से विख्यात टिम्बरसैन महादेव के दर्शनों के लिए इन दिनों आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। वर्तमान शीतकालीन यात्रा के दौरान प्रतिदिन 500 से 1000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन और सीमांत क्षेत्रों में पुलिसिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पवार ने नीति घाटी का दौरा किया। भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने टिम्बरसैन महादेव पहुंचकर वहां मौजूद श्रद्धालुओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने तीर्थयात्रियों से यात्रा मार्ग की स्थिति, सुरक्षा और ठहरने की व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन के अनुभव साझा किए और पुलिस की उपस्थिति पर संतोष व्यक्त किया। वहीं आगामी अप्रैल माह में नीति घाटी में अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की महत्ता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा और पुलिस चौकियों की व्यवस्थाओं का भी बारीकी से निरीक्षण किया। मैराथन के रूट और सुरक्षा मानकों को देखते हुए उन्होंने सुराई थोटा और मलारी चौकियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर पड़ने वाली प्रत्येक पुलिस चौकी की भूमिका सबसे अहम होगी। मलारी चौकी की वर्तमान स्थिति सही नहीं होने के कारण उन्होंने प्रभारी निरीक्षक ज्योतिर्मठ को वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत तत्काल इसकी मरम्मत और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय नागरिकों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं के निस्तारण के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। चमोली से सुरेंद्र रावत की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
देहरादून जिला प्रशासन शहर के प्रमुख चौराहों के सुव्यवस्थित विकास और सौंदर्यीकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इस क्रम में शहर के राजपुर रोड स्थित दिलाराम चौक का सुधारीकरण व सौंदर्यीकरण कार्य अंतिम चरण में है, जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंशल के निर्देशन में दिलाराम चौक को इस प्रकार विकसित किया जा रहा है कि यहां आने वाले पर्यटकों एवं आगंतुकों को उत्तराखंड की पौराणिक संस्कृति और समृद्ध लोक परंपराओं की सजीव झलक देखने को मिल सके। जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल यातायात को सुगम बनाना ही नहीं बल्कि शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों को सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में विकसित करना है, जिससे देहरादून की पहचान एक सुव्यवस्थित, सुंदर व सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध शहर के रूप में स्थापित हो सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बनने का गौरव हासिल किया। हल्द्वानी में राजकीय शिक्षक संघ की अनूठी पहल। शीतकालीन अवकाश के दौरान बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए निशुल्क एक्स्ट्रा क्लास का संचालन। हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट एकता मॉल का निर्माण किया जा रहा है और चमोली जिले के सीमांत क्षेत्र नीति घाटी में टिम्बरसैन महादेव के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।